प्यारे साथियों नमस्कार। आज 30 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शीतल मित्तल, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। अतुल कुमार पांडे, आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। अनामिका शर्मा, आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मोहित पांडे, आप नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। सुधीर कुमार वर्मा, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। और सूरज कुमार, आप पटना बिहार से हैं। तो शीतल, अतुल, अनामिका, मोहित, सुधीर और सूरज, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पर और आज के न्यूज एनालिसिस की शुरुआत करते हैं कल के एआईआर न्यूज से। फ्रेंड्स, आपने कल के एआईआर न्यूज सुनी होगी, उसमें सिविल सर्विस की दृष्टि से अगर हम ढूंढें तो कुछ विशेष बातें नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के सीमा पर जो समस्याएं हैं फ्रेंड, वो आप रोज सुन रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटनाएं रोज घट रही हैं। देखिए वो क्या रूप लेती है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण न्यूज मुझे थोड़ी सी मालूम पड़ती है वह है फ्रेंड्स की जो कराधान कानून संशोधन का जो दूसरा विधेयक कल लोकसभा में पारित हुआ। कल भी मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी कि इसे स्पीकर ने धन विधेयक घोषित किया है और चूंकि यह धन विधेयक है तो यह लोकसभा में ही पारित इसे होना है। अब राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे देंगे और जैसे ही स्वीकृति दे देंगे वो कानून बन जाएगा। मित्रों, यह जो विधेयक आया है आप देखेंगे कि इस विधेयक की भी अपने ढंग से आलोचना होगी। इस तरह से आलोचना खासकर होगी कि सरकार एक और नोटबंदी कर रही है, डिमोनेटाइजेशन कर दिया है, 1,500 के नोट को बंद कर दिया है काले धन को खत्म करने के लिए, और दूसरी तरफ काले धन को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कानून लेकर आ रही है। इससे पहले भी आपको मालूम है कि इस तरह की एक योजना इसी साल कुछ महीने पहले लाई गई थी। फ्रेंड्स, यहां पर आपको ध्यान थोड़ा सा इस बात का देना होगा कि इस बीच में आप देख रहे होंगे कि काले धन को सफेद करने के लिए अलग अलग किस्म के पैंतरे अपनाए जाने लगे थे। लोगों ने जनधन खातों में पैसे जमा कराने शुरू कर दिए थे, हवाला का मामला शुरू हो गया था, इधर सोने की खरीदी शुरू हो गई थी और दूसरे तरीकों से काले धन को सफेद करने की कोशिश की जा रही थी। बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि धन को नष्ट किया जा रहा है। उन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार अब इसे लेकर आई है। देखिए, इसे अगर आप सामान्य रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जो पहले जो काले धन को सफेद करने के लिए सरकार जो योजना लेकर के आई थी वो लगभग उसी जैसी है। यहां आपको इस अंतर को थोड़ा सा समझना होगा। फ्रेंड्स, ये उसी जैसे नहीं है। पहली बात तो यह है, देखिए कि अगर आप किसी भी अपने इनकम पर, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। कॉमन मैन की भाषा में मैं आपसे बात करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कर जो टैक्सेबल जो इनकम है वो 1,00,000 रुपए साल की हुई, तो इसकी आपको एक फिक्स परसेंटेज है, जो मैक्सिमम है वो 30% की रेंज है ना, हम उसको लेकर के चलते हैं, मैक्सिमम 30%। तो 1,00,000 रुपए में का 30% यानी कि 30,000 रुपए आपको सरकार को इनकम टैक्स में देना होगा। जैसे ही आप सरकार को 30,000 रुपए इनकम टैक्स दे देंगे, ये जो 70,000 रुपए हैं, ये 70,000 रुपए आपके पास व्हाइट मनी हो जाएगी, एक वैध मुद्रा हो जाएगा। इस 70,000 रुपए को आप बैंक में रखिए, जहां भी रखना चाहे रखिए, क्योंकि ये आपका इस पर लीगल राइट है। लोग क्या करते हैं कि इस 30,000 रुपए को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उनको लगता है कि 30,000 रुपए बहुत ज्यादा टैक्स रेट है, वो सरकार को नहीं देते। उनको लगता है कि 1,00,000 रुपए बच गए। अब ये जो 1,00,000 रुपए बच गए हैं, इसे आप बैंक में नहीं रख सकते क्योंकि बैंक में रखने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि 1,00,000 रुपए आपके पास आए कहां से, तो इसे आप अपने पास रख लेते हैं। यही अनअकाउंटेड मनी होती है, जो ब्लैक मनी कहलाती है। अब अभी जो सरकार लेकर के आई है मित्रों, अब इसकी इससे तुलना कीजिए। सरकार कह रही कि ठीक है हम 1 लाख का ही आंकड़ा लेते हैं, वो कह रहे कि आप इस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए टैक्स दीजिए। देखिए पहले आप 30,000 रुपए टैक्स देकर 1 लाख रुपए को अपना बना सकते थे, जो भी बचता वो आपका होता। अब उसमें से ये 20% आप यूं कह लीजिए कि सजा के तौर पर है, बटने चुड़ है कि कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, नहीं तो जिन्होंने सही तरीके से टैक्स दिया है वो भी डिमोरलाइज होते हैं। तो 20%, तो अब 30,000 की जगह आपको 50,000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे, राइट। अब रिमेनिंग जो आपके पास 50,000 रुपए बच गए, 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए टैक्स में दे दिए, 50,000 रुपए आपके पास बच गए। अब सरकार का इसके साथ ये भी कहना है कि अब जो 50,000 रुपए आपके पास बचे हैं, इस 50,000 रुपए में से आप सिर्फ 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और बाकी जो आपके 25,000 रुपए बचे हैं ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे और सरकार इनका उपयोग गरीबों के लिए आवास, हेल्थ, इन सब के लिए करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये 25,000 रुपए आपको मिलेंगे नहीं, ये 25,000 रुपए आपको मिलेंगे लेकिन 4 साल के बाद मिलेंगे, यानी कि इसका जो लॉकिंग पीरियड है ये 4 ईयर्स का है। 4 साल के बाद आप अपने इन 25,000 रुपए को निकाल सकेंगे, इस पर सरकार कोई ब्याज नहीं देगी। यानी कि जो पूरी आपकी जो राशि है, 1 लाख रुपए की राशि है, अगर हम इसको अब अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो इस 1 लाख रुपए का 25% सरकार के खाते में जमा रहेगा, 4 साल तक सरकार उसका उपयोग करेगी और उसके बदले में कोई भी आपको ब्याज नहीं देगी। यानी कि ये कह लीजिए कि इंटरेस्ट फ्री सरकार को ये पैसा मिल जाएगा और उसका उपयोग फिर सरकार स्पष्ट कह रही है, यानी कि सरकार उसका अपना राजकोषीय घाटे के लिए कम करने के लिए करेगी या पेट्रोल आयात करने के लिए करेगी, वो सीधे कह रही है कि इसका उपयोग हम ये गरीब कल्याण कोष के रूप में इसमें डालेंगे और गरीबों के लिए मकान बनाना है, गरीबों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, इसमें हम करेंगे। 4 साल के बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें तो 50% वोट आपका गया जिसमें 20% दंड स्वरूप है और ये 25% जो है, यानी कि जो 25,000 रुपए हैं इनके 4 साल का ब्याज जो होता वह भी एक दंड स्वरूप है, क्योंकि 25,000 रुपए का 4 साल में जो ब्याज आपको अदरवाइज मिल सकता था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यह भी एक तरीके से दंड स्वरूप है और सरकार के पास वो पैसा आ जाएगा। तो मित्रों ये इनकम टैक्स में और जो वास्तविक जो हमारा कर नियम है, आयकर नियम है, उसमें और इसमें ये थोड़ा सा फर्क है, इसे आप समझ लीजिएगा। और मुझे लगता है कि समझना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है प्री में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए या मेंस में कोई इस तरह की बात पूछ ली जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। और वैसे भी चूंकि अर्थशास्त्र आपका इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जनरल स्टडीज का जो 3rd पेपर है वो तो पूरी तरह से इकोनॉमी पर ही बेस्ड है और ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये बेसिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, इसलिए भी इस तरह की जब भी कोई बात होती है तो आपको इसी फार्मूले पर, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों ये AIR न्यूज से सच पूछे तो यही एक ऐसी न्यूज थी जिस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते थे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर पर। फ्रेंड्स न्यूज़पेपर में आज कुछ अच्छी क्लिपिंग्स हैं। फ्रेंड्स एक क्लिपिंग है, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा है, ये हमारे वेंकैया नायडू जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के हैं, इनका लेख है। आपने महसूस किया होगा कि वेंकैया नायडू जी के लेख बीच बीच में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर लेख होते हैं। नो डाउट कि चूंकि वो मिनिस्टर हैं तो वो एक जो सरकार का जो व्यू होगा किसी भी टॉपिक पर वो उसी को ही व्यक्त करेंगे, लेकिन मैंने महसूस किया है कि व्यू चाहे जो भी हो लेकिन वो तथ्यात्मक होते हैं, मतलब कंटेंट होता है। देखिए सवाल इसका नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में, सरकार के विरोध में है क्या है, सवाल इसका है कि अगर आप पक्ष में हैं तो कितने तर्क के साथ हैं और अगर आप विपक्ष में हैं तो कितने तर्क के साथ हैं। तो इनके लेख में मुझे तर्क दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अभी जो डिमोनेटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, इन्होंने बताया है कि कैसे ये एक कल्चरल रिवोल्यूशन है, ये बेसिकली सांस्कृतिक क्रांति है और मैं इससे सहमत हूं। जरूरी नहीं कि आप भी सहमत हों। स्टूडेंट्स को, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने जो मार्क्स की थ्योरी है, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में बताया था कि कैसे जो इकोनॉमी होती है वो न्यूक्लियस होती है और बाकी जो चीजें होती हैं वो सुप्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं, और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो सारा का सारा तंत्र बदल जाता है। और मैं स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि अभी आप लोगों को लिबरलाइजेशन पर जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें भी मैंने इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए लिबरलाइजेशन का किस तरीके से समाज पर, महिलाओं पर, संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है उसकी व्याख्या की थी। आप बिल्कुल वही चीज लगभग लगभग इस आर्टिकल में पाएंगे। तो मित्रों, इस आर्टिकल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैंने देखा है कि जब नायडू जी के इस तरह से कोई आर्टिकल छपते हैं तो हिंदी में भी इसका अनुवाद आ जाता है। लेट्स वेट, कुछ हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर हिंदी अनुवाद इस आर्टिकल का आ गया तो वह आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और यदि नहीं आया तो फिर मेरी कोशिश होगी कि इसे मैं हिंदी में आप लोगों को इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो उपलब्ध कराऊं। दोस्तों, एक आर्टिकल है, वेल एडिटोरियल कमेंट है जनसत्ता का। ये खबर दैनिक हिंदुस्तान में दो दिन पहले आई थी, मैंने ध्यान दिया था लेकिन बाकी अखबारों ने इसको टेकअप नहीं किया। खबर यह थी दोस्तों कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें एक याचिका दायर की गई जो हिंदी में दायर की गई थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहकर वो याचिका रिजेक्ट कर दी कि हम केवल अंग्रेजी में काम करते हैं। और उसमें ट्रिब्यूनल का देखिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके अपने नियम में यह दिया हुआ है कि वो केवल अंग्रेजी में ही एनजीटी काम करेगी, तो उसने अपने नियम का पालन किया है। तो एक भाषा का जो सवाल है, यहां एक उदाहरण है कि किस तरीके से न्यायिक तंत्र में अंग्रेजी का अभी भी प्रचलन है, उसको लेकर के जनसत्ता ने एक एडिटोरियल कमेंट किया है, ये मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं, ये आप लोग देख लीजिएगा। फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है शशि थरूर जी का, और शशि थरूर जी का यह आर्टिकल दैनिक भास्कर में छपा है। इसमें इन्होंने खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके उनका जो मानस है, उनका जो मस्तिष्क है, और खासकर कट्टरतावाद और उदारवाद, इन सबको मिलाने की जो तकनीक उनके पास है, उसको लेकर के एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। देखिए, वैसे तो शशि थरूर जी जो भी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, मैं तो उनके लिखे हुए का फैन हूं और उनके बोलने का उससे भी ज्यादा फैन हूं, क्योंकि मैंने शशि थरूर जी को इस आमने सामने बोलते हुए भी सुना है, जब वो किसी टॉपिक पर बोलते हैं। नो डाउट मित्रों कि वो कांग्रेस के हैं, जब भी कुछ लिखेंगे तो उसमें पार्टी लाइन कहीं ना कहीं काम करती है, फिर भी वो अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखते हैं, और कभी कभी वो पार्टी लाइन से हट करके यूं कह लीजिए कि वो सच्चाई भी बयान करते हैं। जैसे अभी मोदी जी के बारे में उन्होंने जो भी कहा है, कांग्रेस बट नेचुरल है कि अभी प्रधानमंत्री की बहुत ही मुखर आलोचक है, शशि थरूर जी भी कांग्रेस से हैं, लेकिन यहां आपको इस आर्टिकल में मोदी जी की आलोचना नहीं मिलेगी, बीच बीच में आपको उसकी छोंक दिखाई देगी लेकिन कहीं ना कहीं प्रशंसा भी मिलेगी। मित्रों, इसमें जो मुख्य बात कही गई है, जो मैंने अभी आप लोगों को पिछले सप्ताह एक सैटरडे को क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया था, आपको ध्यान होगा, जो वीकली क्वेश्चन होता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद और फिर धर्मनिरपेक्षता, ये तीन शब्द उसमें दिए हुए हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। एक कट्टर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, फिर राष्ट्रवाद क्या है, और धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन तीनों को बहुत स्पष्ट, आपको इन तीनों की बहुत स्पष्ट समझ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, इस तथ्य की समझ शशि थरूर जी के इस लेख से हो सकेगी, बशर्ते कि आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप ऐसे ही पढ़ करके किनारे कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, बस लेख अच्छा लग सकता है कि हाँ अच्छा लेख है, मजेदार लेख है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मित्रों वहां होता है जहां हम अपनी ही संस्कृति को राष्ट्र का पर्याय बना देते हैं, कट्टर संस्कृति को हम अपनी कट्टरता को अपना लेते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर हम लेकर के चलें तो आप कह सकते हैं कि जो हिटलर का जो राष्ट्रवाद था, उसने भी तो आज जर्मनी राष्ट्र का ही नारा दिया था, उसने तो रक्त सिद्धांत तक का नारा दे दिया कि जर्मन रक्त, जो आर्य रक्त है, वो श्रेष्ठ रक्त है। तो उसने अपनी उस संस्कृति को आधार बनाकर के लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम की भावना भरी, जिसमें उन लोगों में उग्रता आ गई और उसका नतीजा क्या हुआ? सच पूछे तो यहूदियों का संहार उसी की प्रतिक्रिया में था कि यहूदियों का रक्त जो है वो बेकार रक्त है, अशुद्ध रक्त है, हमारा रक्त शुद्ध रक्त है, इनको खत्म करो नहीं तो हमारे रक्त को अशुद्ध कर देंगे। ये एक खतरनाक वृत्ति होती है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है और प्रत्येक नागरिक का यह धर्म ही है, कर्तव्य ही है कि वह अपने राष्ट्र से प्रेम करे, क्योंकि हमारे जीवन का जो भी आधार है वह हमारा राष्ट्र है। फिर हमें अपने राष्ट्र को समझना पड़ता है। हमारा राष्ट्र क्या है? भारतीय संदर्भ में हमारा राष्ट्र समन्वयवादी है, जो सभी धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र को लेकर के चलता है, और यही व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, जिसे नाम दिया गया है पंथ निरपेक्षता। राइट, तो मेरी समझ से ये तीनों बातें अब आपको बहुत स्पष्ट हो गई होंगी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, जो कट्टरता होती है, लेकिन उस कट्टरता में फिर वो संस्कृति के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी कट्टरता को सिद्ध करने के लिए जो बात कहेंगे वो संस्कृति की बात कहेंगे। एक धार्मिक राष्ट्रवाद भी हो सकता है, धार्मिक कट्टरतावाद हो सकता है, जब आप धार्मिक तत्वों का इस्तेमाल करें, है ना, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और नागरिकता की भावनाओं से प्रेरित होते हैं और अपने राष्ट्र को समझते हैं, राष्ट्र की जरूरतों को राष्ट्र के विकास में जुड़े होते हैं, ये एक बहुत ही बैलेंस दृष्टि होती है राष्ट्रवाद की। और धर्मनिरपेक्षता जो सच पूछे तो भारत का एक प्रकार से राष्ट्रवाद है। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों को पृष्ठभूमि बता दी है और मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि को जानने के बाद आपको शशि थरूर जी का ये जो लेख है ये शायद ज्यादा समझ में आ सकेगा। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि ये जो आपका जो हमारा न्यूज एनालिसिस का जो पार्ट होता है, तो प्लीज इस पर भी आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं दें। इस पर प्रतिक्रिया की संख्या बहुत कम है, मैं अगर लाइफ मैनेजमेंट के साथ इसकी तुलना करूं तो 90% प्रतिक्रिया लाइफ मैनेजमेंट पर होती है और हार्डली 10% प्रतिक्रिया न्यूज एनालिसिस पर होती है, जबकि मैं चाहता हूं कि आप न्यूज एनालिसिस पर भी उतनी ही प्रतिक्रिया दें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से तो न्यूज एनालिसिस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के लिए, फोर्थ पेपर के लिए, एसे राइटिंग के लिए लाइफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लाइफ होल आपके पूरे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज एनालिसिस पर भी आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। और दोस्तों, फिर जो आखिरी एक लेख जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो दैनिक हिंदुस्तान में है, केसी त्यागी जी का लेख छपा है, जो हमारी आदिवासी, जो जंगलों में रहने वाले हमारी जनजातियां हैं उनकी समस्याओं के बारे में है, इसे भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और भी दूसरे आर्टिकल्स हैं मित्रों, उनकी मैं यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें देख लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल के चरण पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं, मुस्तफा भट्ट जो जम्मू कश्मीर से हैं, तनवर शमशेर अली, आलोक कुमार बाराबंकी से हैं, जगदीश चौधरी एक खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, स्नेहा कुशवाहा भागलपुर बिहार से हैं, सोनू कुर्मी, दीपक वर्मा, नितिन सिंह, शुभम गौर, सतीश जायसवाल सिंगरौली मध्य प्रदेश से, हेतराम प्रजापत जयपुर से और नील कमल यादव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।